बंद पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 5 ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम श्रुतात्मने नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वर्चायानं नमो लोए सौवसाहूनं भूतबली प्रणीतं तं बंधतत्व प्रकाशकम् महाधवल विख्यातम् महाबंधम् नमाम्यहम्। यह श्री भगवान भूतबली भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें चौथी पुस्तक में तीसरा अनुभाग बंध विकार चल रहा है। और अभी हम आए पृष्ठ संख्या 23 पर 23 जघन्य अनुभाग बंध की स्वामित्व की प्ररूपना चल रही है। और मार्गणाओं में देखते हुए अभी हम संयम मार्गणा की बात यहाँ चलेगी। अपनी मनपरे ज्ञानी की बात अपनी हुई थी और वहां कहते इसी प्रकार संयत जीवों के जानना चाहिए। उसी पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में हमने दो तीन ही लाइन पढ़ी थी कि मन परे ज्ञानी के लिए असंयम के अभिमुख लिखा और संयतों के लिए कहेंगे कि मिथ्यात्व के अभिमुख जो गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग के लिए कहेंगे। अब सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवों में चार घाती कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी नवे तक होता है और घाती कर्म प्रशस्त है तो अंतिम समय में तो अनिवृत्ति कर्म क्षपक उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। शेष कर्मों का भंग मनपरे ज्ञानी जीवों के समान है। इतनी विशेषता है कि गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी मिथ्यात्व के अभिमुख और जघन्य अनुभाग बंध में विद्यमान उक्त जीव है। सामान्य संयत कहो या सामायिक संयत चतुपस्थापना संयत कहो, उनके लिए तो मिथ्यात्व के अभिमुख कहना और मन परे ज्ञानी के लिए असंयम के अभिमुख, असंयम के अभिमुख लिखना। हाँ देखो, ये तो संयम ही है, उच्च गोत्र ही बांध रहे हैं। उसका जघन्य अनुभव कब होगा? जहाँ संकलित ज्यादा है तो मिथ्यात्व के अभिमुख वाला लेना इसमें। और मिथ्यात्व के अभिमुख वाले अलग अलग जीव भी हो गए, उनकी अलग अलग विशुद्धि सहित उसमें से जनक जघन्य अनुभाग बंद करने वाला जीव लिया। परिहार विशुद्धि संयत जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत और सर्व विशुद्ध अन्यतर अप्रमत्त संयत जीव, क्योंकि छठा साता दोनों गुण स्थान है, उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय आयु और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग बंध में विद्यमान अन्यतर जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। क्योंकि जहां विशुद्धि ज्यादा होगी तो सात वेदनी का उत्कृष्ट बंध होगा, अब संकलेश ज्यादा होगा तो असाधारण वेदनी का होगा, इसलिए मध्यम परिणाम ले। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी परिहार विशुद्धि के लिए क्या कहना? तो सामायिक छेदोपस्थापना के सम्मुख कहना। तो कहते साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त सामयिक और छिदोपस्थापना संयम के अभिमुख तथा जघन्य अनुभाव बंध में अवस्थित अन्यतर प्रमत्त संयोजी गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाव बंध का स्वामी। अभी साधारण ख्याल भी आए ना कहाँ कैसे लेना है, बातें 24 पृष्ठ पर। सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीवों में तीन घाती कर्मों का भंग ओवर के समान है, इन्हें क्षपक है और वहीं पर उसका अंतिम बंध है। बंध कहना अनुभाव कांडक नहीं कहना, बंध। इतनी विशेषता है वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाव बंध का स्वामी कौन है। अभी इसमें तो शुभ प्रकृतियां बंधी बन रही है, उपशम श्रेणी से उतरने वाला लेना तो उपशम श्रेणी से गिरने वाला और जघन्य अनुभाव बंध में अवस्थित जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाव बंध का स्वामी है। अंत में लेना हो ना, मरण के सन्मुख से थोड़ी संकलेश होगा, ये तो अंतिम अनुभाग बंध लेना नीचे सबसे नीचे यानी सूक्ष्म सांप्रदायिक का अंत में लेना, उपशम श्रेणी से नीचे आने वाला जी। 24 पृष्ठ पर आए हम, मार्गणा में जघन्य स्वामित्व देख रहे थे। अब संयता संयतों में अब एक ही गुणस्थान है, चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाव बंध का स्वामी कौन है। अब यहाँ सर्वविशुद्धि कब होगी, जब संयम के अभिमुख होगा तब। तो कहते सर्वविशुद्ध और संयम के अभिमुख अन्यतर मनुष्य समय दृष्टि जी उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाव बंध का स्वामी है। मिला क्या 73 नंबर पर। अभी तीसरी लाइन, वेदनीय नाम और आयु कर्म का भंग परिहार विशुद्धि संयत जीवों के समान है। हाँ, मध्यम परिणाम लेना इसमें, परिवर्तन। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। यहाँ तो उच्च गोत्र का ही बंध हो रहा है, तो अभी उसका जघन्य कब होगा, जब संकलेश ज्यादा होगा। तो साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त मिथ्यात्व के अभिमुख और जघन्य अनुभाग बंध में विद्यमान अन्यतः तीर्यंच और मनुष्य दोनों को लिए गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध के स्वामी है। असंयतों में संयम मार्गणा की अपेक्षा असंयतों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। तो साकार जागृत सर्व विशुद्ध संयम के अभिमुख, क्यों विशुद्धि तभी ज्यादा होगी, तो संयम के अभिमुख तो मनुष्य होगा ही, और जघन्य अनुभाग बंध में विद्यमान अन्यतर मनुष्य उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। हाँ हाँ, संयम सातवें में जाने के पहले की बात है ना, है तो वो चौथे वाले
संयम के सम्मुख
चौथे से सातवें में जाने, मगर यहाँ लिखा नहीं है उन्होंने, वैसे
कहाँ पे भी लिखा नहीं है, पहले भी एक दो बार ऐसे आया था।
सही यहाँ जब बता रहे कि तमने करके जीव, अच्छा यहाँ तो सही
नहीं, उन्होंने कहा कि ये पहले गुणस्थान से भी सातवें में जा सकता है, चौथे से भी जा सकता है, तो विशुद्धि चौथे वाले की जाना होगी। कुछ भी हो फिर भी वहाँ उसकी ज्यादा होगी, चौथे वाले की ज्यादा होगी। शेष कर्मों का भंग उभ के समान है। शेष कर्म है कौन से? वेदिनी नाम गोत्र का तो मध्यम परिवर्तमान वो ले लें, परिवर्तमान मध्यम परिणाम। नारकी के लिए नारकी का समित्व के समीप वाला लेना, वो मैं उसी को लिया था ना। गोत्र का सातवें नरक वाले के और अन्य परिवर्तमान मध्यम। कृष्ण लेशा में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सर्व विशुद्ध अन्यतर नारकी समय दृष्टि जी उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदिनी नाम और गोत्र कर्म का भंग सामान्य नारकियों के समान है। गोत्र में तो ऐसे कृष्ण लेशा सातवें नरक में तो हम लेते ही है, वेदिनी और नाम में तो परिवर्तमान को लिया था ना। आयु कर्म का भंग ओघ के समान है। ओघ के समान मनुष्य और तीरियंच आयु होगी कृष्ण लेशा में। हाँ, कृष्ण लेशा में हम कहते हैं वो तो लभ्य पर्याप्त उनको लेना है, क्योंकि वो एक इंद्रिय को भी लेने ना, हम नारकी की अपेक्षा सोच रहे थे। हाँ, इन्हें लब्धि वहाँ लिखा था अपर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान वगैरह वगैरह। पता नहीं वो, अभी जब बातें आएगी ना कौन सी आयु की अनुभव कितना होता है, बहुत सी बातें अभी भी थोड़ी क्लियर नहीं है ना, और आगे का मैंने पढ़ा नहीं है। इसी प्रकार जगन्य अपर्याप्त पर्याप्ति से, हाँ, अपर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान है सब। जगन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान। हाँ, पर्याप्त जीवों में पर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान। इसी प्रकार नील और कपोत लेशा वाले जीवों को जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग स्वामी बंध का स्वामी कौन है? तो कहते सब पर्याप्तियों से पर्याप्त। अभी हम गोत्र कर्म का जघन्य तो नारकी की बात सोचते हैं, ऐसा नहीं, एक इंद्रिय में ही सोचना है। साकार जागृत और सर्व विशुद्ध अन्यतर बादर अग्नि का एक और बादर वायु का एक जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। इतनी विशेषता है नील लेशा में तत्प्रायोग विशुद्ध जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। सर्व विशुद्ध नहीं लिया, तत्प्रायोग विशुद्ध लिया। और हाँ, एक इंद्रियों में देखो, कपोत में सर्व विशुद्ध होगा ना, नील में सर्व विशुद्धि नहीं हो सकती। एक इंद्रियों में कपोत लेशा वाला है, वहाँ उनके लिए जो जघन्य अंश होगा वहाँ उसको सर्व विशुद्ध कहेंगे। एक इंद्रिय में तीनों लेशा है तो सर्व विशुद्धि किसमें होगी? कपोत में होगी। इसलिए कपोत में वो तो सर्व विशुद्ध कहना ठीक है, परंतु नील में तत्प्रायोग विशुद्ध कहेंगे, नील के लिए विशुद्ध है। तीनों होगी ना, बिल्कुल, वही तो लिखा है। इसी प्रकार क्या लिखा कि इसी प्रकार निरोल कपोत लेशा वालों में जानने चाहिए। तो उसमें गोत्र कर्म के लिए क्या लिया है? देखो कृष्ण लेशा में तो वो सातवें नरक का नारकी लिया, नीलेशा में नारके नहीं लिया,
नीलेशा में तो
अग्नि का ही पाई कर, कपोत में भी अग्नि का ही पाई का ही लिया। तो नील के लिए कहेंगे तत्प्राय विशुद्धि और कपोत के लिए कहेंगे सर्व विशुद्धि, क्योंकि अग्नि का एक में अधिक से अधिक विशुद्धि कपोत लेशा में होगी, पर्याप्त बादल। तत्प्राय विशुद्ध कहो ना, ज्यादा क्यों उसमें झंझट न करते, यानी उनके लिए सर्वी पूरी विशुद्धि अधिक विशुद्धि कपोत में होगी। अब पीतलेशा में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बनने था, स्वामी कौन है? देखो अभी पीतलेशा अधिक से अधिक गुणस्थान कौन सा ऊपर का हो सकता है? सर्व विशुद्ध अन्यतर अप्रमत्त संयत जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंद का स्वामी है। शेष कर्मों का भंग सौधर्म कल्प के समान है। चार घाती तो हो गए, अब कौन से रह गए? वेदनीय नाम और गोत्र, उसमें तो परिवर्तमान लेना। आयु में क्या लिखेंगे? देव लेना पड़ेगा। देव तिरियंश आयु वाला जगन है ना, मनुष्य आयु का अनुभाग ज्यादा है, हमने पहले देखा था। 200 धर्म तो तत्प्राय कहना पड़ेगा उसको, यानी तीव्र संकलेश नहीं कह सकते। जगन्य बंधे तो तत्प्राय लेना, तत्प्राय संकलेश वाला परिवर्तमान होगा ना, उसमें हमने देवों में क्या देखा था? नरकी के समान देखा था, दूसरी पृथ्वी के समान। केवल नरक में सातवें नरक में वो घटित किया था, अन्यत्र तो परिवर्तमान में ही लिया सबको, देवों में भी मध्यम परिणाम वाला लिया। मिथ्यात्व के सन्मुख कहाँ से? अभी वो परिवर्तमान मध्यम परिणाम वो तो दोनों को ले सकते, समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि। इसी प्रकार पद्म लेशा में भी जानना चाहिए। किसमें? सौधर्म कल्प में 18, देवों में और दूसरी पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि लिया जगन्य अनुभव बंद का स्वामी, यानी वो नीच गोत्र बांधने वाला होगा, इसलिए उसको जगन्य में नीच गोत्र को लिया। गोत्र में मध्यम परिणाम वाला लिया था ना, मिथ्या दृष्टि। देखो साता साता के लिए सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों लेते हैं, परंतु यहाँ तो गोत्र कर्म में जघन्य होगा, उच्च गोत्र से भी निच गोत्र में जघन्य होगा, इसलिए उसको मिथ्या दृष्टि लिया। शुक्ल लेशा में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंधता स्वामी ओक के समान क्षपक। शेष कर्मों का भंग आनत कल्प के समान है। आनत में क्या विशेषता है? कुछ नहीं विशेषता। हाँ, अनुदिश से लेकर अलग होगा। ग्रेवेग उपरिम ग्रेवेग तब तो दूसरी के पृथ्वी के समान ही था, यानी वो पूतपन्न जैसे होगा, बाकी में तो केवल क्षपक की प्रकृति है, ऊपर उसका जघन्य होता है, और गोत्र में भी मिथ्या दृष्टि में लेना उसको, वेदिनी और नाम के लिए समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों ही हो सकते हैं। अब 25 पेज क्षयिक समय दृष्टि जीव में चार घाती कर्मों का भंग ओह के समान है, यानी क्षपक के हो गया। हाँ, दूसरी पृथ्वी के, दूसरी पृथ्वी में हमने क्या देखा था, शेष कर्मों का लिया ना, मिथ्या दृष्टि गोत्र के लिए लिया और वेदनीय नाम के लिए ओग के समान कहा। तो हाँ, वेदनीय देखो इसी पेज पर, 18 पेज पर देखो, ऊपर से तीसरी लाइन, वो ओग में लिखा था। दूसरी पृथ्वी में क्या लिखा, वो गोत्र के लिए लिया है वेदिनी, और पहले उन्होंने बताया वेदिनी नाम और गोत्र है वो ओग के समान, फिर उसमें गोत्र की विशेषता बता दी। अब इसी को बताते ओग में क्या लिखा है, तो 18 पेज पर तीसरी लाइन में वेदिनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, अन्यथा समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला जीव वेदिनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। अब आयु के लिए हम जघन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान कहेंगे, शुक्ल वेश्या में आयु का बंध वो तो पर्याप्त जीव ही बांधेंगे ना, तो अपर्याप्तों के तो होता नहीं है ये। अभी साता असाता दोनों लेंगे, अभी असाता के जघन्य से साता का जघन्य ज्यादा होगा वैसे, है
ना।
हाँ, तो असाता का जगह नहीं ले सकते, परंतु वो मध्यम परिणाम ही लेना है, परंतु यहाँ हम साता असत का भेद यहाँ नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम वेदिनी इन जनरल कहेंगे। बिल्कुल। अभी क्षायिक समय दृष्टि में घाती कर्मों का भंग ओग के समान है, क्षपक के होगा क्योंकि वो क्षायिक समय दृष्टि है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंधता स्वामी कौन है, साकार जागृत। अभी गोत्र कर्म ये तो क्षायिक समय दृष्टि है, तो उच्च गोत्र ही बांधेगा नियम से, तो साकार जागृत और नियम से उत्कृष्ट संक्लेश युक्त चार गति का असंयत समय दृष्टि जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंधता स्वामी। अभी क्षायिक है तो उसको मिथ्या तो के अभिमुख भी नहीं कह सकते, तो हाँ उत्कृष्ट संकलेश में है, बस इतना ही लेना। शेष कर्मों का भंग अवधि ज्ञानी जीवों के समान है। अभी गोत्र लिया, चार घाती लिया, अभी शेष में क्या बचे, और आयु। तो नाम और गोत्र में तो परिवर्तमान लेना है क्योंकि समय दृष्टि है ना, इसमें परिवर्तमान मध्यम लेने पड़ेगा। देखो पेज नंबर 23 पर वेदनी और नाम के लिए अन्य तो चार गति का परिवर्तमान मध्यम परिवर्तन, आयु के लिए ये चारों गति का जो लिया, जघन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान, जघन्य अनुभाग बंध में आवश्यक, अन्यतर चार गति का जीव। कौन से बांध रहे उसकी बात नहीं, पर कौन बांध रहे ऐसा भी नहीं, अगर मनुष्य ही लेने होते तो देव और नारकी कहते। चारों गति का जीव उक्त करका अनुभव बंध का स्वामी बताया, चारों गति को लिया, कोई भी गति का जो बांध रहा है उसके लिए है। वहाँ गोत्र कर्म के लिए तो मिथ्या तो की अभिमुख लिखा, वहाँ तो ये लिखना नहीं है, वो तो बता दिया उन्होंने गोत्र कर्म की अलग बात। आयु के लिए चारु गति का लिया है, वेदक समय दृष्टि जीवन चार घाती कर्मों का भंग तीत लेशा वाले जीवन के समान है, ये सातवें गुण स्थान मिल लेना सर्व विशुद्ध। शेष कर्मों का भंग अवधिज्ञानी जीवन के समान है। अब वेदक समय दृष्टि में गोत्र कर्म को भी मिथ्यात्व के सम्मुख वाले को लेना, शायिक समय दृष्टि में हमने संकलेश वाला लिया। उपशम समय दृष्टि जीव में तीन घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, ये तीन घाती है उपशम समय दृष्टि है, तो अधिक विशुद्ध कहाँ होगी, तो उपशम श्रेणी में होगी। तो अंतिम जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर उपशामक सूक्ष्म सांप्रायिक जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बनने का स्वामी, क्योंकि ये घाती है ना, तो इसलिए उपशम श्रेणी चढ़ने वाले के दसवें के अंत में लेना। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का भंग, अब ये समय दृष्टि है, हाँ तो इसमें तो वेदनीय नाम में तो परिवर्तमान लेना, गोत्र कर्म का मिथ्यात्व के सम्मुख ले सकते हैं इसको। मोहनी को छोड़ा था, मोहनी कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, अन्य तो उपशामक अनिवृत्ति करण जीव मोहनी कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी, इन लोक कषाय की अपेक्षा जघन्य कहेंगे उसको।
साधन समय दृष्टि चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, सर्व विशुद्ध अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है, वेदनीय नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला चार गति का जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। अब यह नीच गोत्र का भी बंध हो सकता है ना। आयु कर्म का भंग नारकियों के समान है, क्योंकि सासाधन वाला है, पर्याप्त जीव है।
सासाधन में चार घाती कर्मों का छह अवतार के पहले समय जो छह अवतार के लिए
ऐसा उन्होंने कुछ उसमें नहीं बताया, सर्व विशुद्ध ले लिया बस इतना ही। अब वो जल्दी नीचे आता है तो उसकी विशुद्धि ज्यादा है, अभी जो कुछ यथायुग होगा, क्योंकि छह अवली में शुरुआत में उसको भी शुद्धि होगी, लास्ट लास्ट में संकलेश हो गया। हाँ एक समय वाला नहीं, परंतु एक समय वाला है तो परंतु उसकी बात नहीं है, परंतु उपशम के काल में जल्दी उसका उदय आया अनंत अनुबंधी का, तो उसकी उसकी विशुद्धि क्योंकि संकलेश ज्यादा होंगे ना, इसलिए छह अवली पहले उसका उदय है। अभी इसीलिए हम अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं कहेंगे। आयु कर्म का भंग नारकियों के समान है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, साकार जागृत और सर्व विशुद्ध सातवीं पृथ्वी का नारकी जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी, क्योंकि पहले और दूसरे गुणस्थान वाले नीच गोत्र ही बांधते हैं वहां नियम से। समय मिथ्या दृष्टि जीवों में चार घाती कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सर्व विषयगर सम्यक्त्व के अभिमुख अन्यतर चार गति का जो उक्त कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी, तीसरे से चौथे में जाने वाले वेदिनी और नाम कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला चार गति का जीव उक्त कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है और गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी तीसरा गुण स्थान है तो उच्च गोत्र ही बंधेगा, तो साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और मिथ्यात्व के अभिमुख अन्यतर चार गति का जीव गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। असंगियों में एकेंद्रियों के समान भंग है, क्योंकि असंगी कहने से एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय सब आ गए, तो गोत्र कर्म का वहाँ अग्नि का एक वायु का एक में हम देखते हैं, बाकी तो बादरे के जगन्य बंधे की बात है ना, परिवर्तमान मेरे अनाहरकों में कार्मण का योगी जीवों के समान भंग है। इस प्रकार जगन्य स्वामित्व समाप्त हुआ, इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ। अब ये काल प्ररूपण उन्हें नंबर नहीं दिए ना, तेरह नंबर है क्या? स्वामित्व बारह हुआ, अच्छा उन्होंने दिया ही नहीं है, बारह तक नंबर दिए, नियोग नंबर तेरह। काल प्ररूपण कैसे कहेंगे? उत्कृष्ट बंद हो रहा है तो लगातार कितने काल तक होगा एक जीव की अपेक्षा, जगन्य बंद लगातार कितना होगा तो ये बताएंगे। अभी काल दो प्रकार का है, जगन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का कितना काल है? जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय, क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश लगातार दो समय तक ही हो सकते हैं। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बराबर है, क्योंकि उत्कृष्ट तो पंचेंद्रिय में होता है, संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि के, ये उत्कृष्ट की बात हो रही है, तो जो उत्कृष्ट नहीं वो सब अनुत्कृष्ट है, तो एक पंचेंद्रिय में गया ही नहीं तो अनंत काल बताए। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल तीन प्रकार का है, इनका उत्कृष्ट बंध कब है?
उत्कृष्ट बंध तो वेदनी का होगा,
किसका होगा उसे कहा फर्क पड़ता है? सूक्ष्म सांप्रदाय के अंत में होगा इसका बंद, उत्कृष्ट
बंद
लगातार अनुभव की बात है। अनुसमय होता है ना वहां पर, और प्रशस्त समय प्रत्येक समय में होता है घटना, वैसे बंधना भी होगा यहाँ पर, इसलिए एक समय लिया। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का मैक्सिमम अनुभाग बंध
अनुभाग
अनुत्कृष्ट अनुभव बंध का काल तीन प्रकार के, अनादि अनंत, उत्कृष्ट हुआ है अनादि शांत यानी उत्कृष्ट हुआ, और सादी शांत अनुत्कृष्ट हो रहा था, उपशम श्रेणी में बंध मिल गए और फिर शुरू हुआ अनुत्कृष्ट ही शुरू हुआ, तो उपशम श्रेणी में हाँ यानी बीच में जगन्य नहीं हुआ, बीच में सॉरी बीच में उत्कृष्ट नहीं हुआ है, बीच में हुआ ही नहीं है इस अपेक्षा से। जो सादी शांत काल है उसका यह निर्देश है, जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्योंकि अनुत्कृष्ट शुरू हुआ फिर अनुत्कृष्ट एंड कब होगा, जब फिर दोबारा श्रेणी चढ़ेगा तब व्यापक श्रेणी चढ़ेगा और अंतर होगा, ये अंतर नहीं वो बंद ही रुक जाएगा तब, यानी उत्कृष्ट होगा इसलिए कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन लीजिए। देख फिर से ये किसकी बात चल रही है, अनुत्कृष्ट का काल चल रहा है, अंतर नहीं काल चल रहा है, अनुत्कृष्ट बंद हो रहा था अनादि से, अब वो रुक गया बंद रुक गया, तब रुक गया ग्यारहवें में, ग्यारहवें गुणस्थान में रुक गया, दसवें में वापस शुरू हुआ उल्टा लौट कर आया था, तो कैसा शुरू हुआ था, अनुत्कृष्ट शुरू हुआ क्योंकि उपशम श्रेणी में उत्कृष्ट तो होता ही नहीं कभी, तो अनुत्कृष्ट शुरू हुआ फिर लगातार उसका बंद होगा अंतर्मुहूर्त में, फिर उपशम श्रेणी चढ़ा, उपशम श्रेणी में भी मिट जाएगा वो, और शपक श्रेणी चढ़ना है तो भी चलेगा।
शपक श्रेणी का काल
शपक श्रेणी चढ़ेंगे तो बारहवें में नहीं, उसके अंतिम अनुभाग में चला जाएगा तो उसका अनुत्कृष्ट रुक जाएगा,
अंतिम अनुभाग
उत्कृष्ट हो जाएगा एक समय के लिए, तो उपशम श्रेणी चढ़ने का काल ज्यादा है क्या, शपक का कम होगा तो शपक श्रेणी चढ़ाएंगे उसके, तो अंतर्मुहूर्त हुआ ये ख्याल में आएगा, उपशम श्रेणी उतरते हुए अनुत्कृष्ट ही शुरू हुआ, अंतर्मुहूर्त में क्षपक श्रेणी चढ़ी तो अनुत्कृष्ट मिटकर अंतिम समय में उत्कृष्ट हुआ, तो अनुत्कृष्ट का लगातार काल कितना हुआ, मिनिमम अंतर्मुहूर्त सादी शांत काल। अब उपशम श्रेणी पहली बार चढ़ के उतरा तो अनुत्कृष्ट शुरू हुआ सादी हुई, फिर वो नीचे आए क्रम से मिथ्यात्व में भी गए, बांधते ही रहे चार घाती कर्म, तो कब तक बांधते रहेंगे, फिर वहां से आए अंतिम भव में ही आए और फिर दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ के क्षपक में अंतिम समय में उत्कृष्ट किया, तब जाके उसका अंत हुआ अनुत्कृष्ट का अंत हुआ, तो कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। नहीं नहीं क्षपक ही लास्ट में क्षपक ही चढ़ना अंत में एकदम, क्योंकि उसका काल बड़ा करना है ना, क्या में यही बात। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है, स्थिति तो हम एक ही समय के लिए लेते, दूसरे समय से स्थिति लगातार घटती चली जाती थी, यहाँ तो अनुभाग में दो समय भी लिए, क्योंकि कोई परिणाम अनुभाग बंध के कारणभूत परिणाम दो समय तक मैक्सिमम रह सकता है, उत्कृष्ट अनुभाग के लिए ये दो समय, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, यानी आयु का बंध हीनादि होना होगा उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, वही तो कहती हूँ,
दो समय के लिए उत्कृष्ट होगा तो स्थिति के
साथ उसका तो लेना देना, वो मैं समझी, परंतु अनुत्कृष्ट का एक समय कैसे घटित किया और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, यानी उसने उत्कृष्ट बांधा ही नहीं अनुत्कृष्ट ही बांधा मान लेते,
मजा आ रही
या अंत में उत्कृष्ट करके अनुत्कृष्ट करके फिर वो रुक गया, ऐसा भी हो सकता है ना? वही तो मैं कहती हूँ, इसका अर्थ हीनादिक बनता है अनुभव स्थिति में, तो जैसे कंटिन्यूअस हीन बनती थी, अनुभव में हीनादिक कहीं भी कुछ बन सकता है, ये घटित होता है इससे। इसी प्रकार आयु कर्म का अनाहारक मार्गना तक काल जानना चाहिए, यानी सब जगह आयु बंध में यही बात होगी। उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल दो समय है, अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। यानी अन्य मार्गना वहां तक ले, अनाहारक मार्गना एक्चुअली आहारक मार्गना होती है, आहारक में तो बंद मार्गना का नाम आहारक मार्गना है, आहार मार्गना है, अनाहारक मार्गना लिखा है परंतु आहार मार्गना है। जब मार्गना कहते तो उसके सब भेद उसके अंदर आ गए, जैसे हमें समित्व की मार्गना कहते तो उसमें मिथ्या दृष्टि भी एक भेद है, सासाधन भी भेद है, है ना? वैसे आहार मार्गना में आहार मार्गना पाए, आहार केवल लिखना है। अब ये जो ओह का हमने देखा, ऐसा ही ओह के समान मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, अचक्षु दर्शन, भव्य और मिथ्यादृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि भव्य जीवों में अनादि अनंत विकल्प नहीं है। जो हमने चार घाती कर्मों में अनादि अनंत विकल्प देखा था, तो भव्य में तो अनादि शांत और साधि शांत हो गए। विशेषांत चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध उत्कृष्ट संक्लेश रूप परिणामों से होता है। इनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। हमने क्षपित कर्मोशिक और गुणित कर्मोशिक में देखा था, याद है कि सातवें नरक में गया, बहुत बार संक्लेश के अंत में दो समय तक लगातार उत्कृष्ट बंद करके निकला वगैरह वगैरह। हाँ, तो दो समय है, आयु में भी ऐसा ही लिया। गुणित में यानी यही बात आयु में भी लागू होती होगी, दो समय वाली। इसलिए चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाव बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है, क्योंकि उत्कृष्ट बंध तो ये संगी पंचेंद्रिय जीव को होता है, मिथ्या दृष्टि को। जो जो इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके एक समय के लिए अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है, पुनः उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने लगता है, उसके इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का एक समय काल उपलब्ध होता है। तथा समझ में आई बात, दो उत्कृष्ट के बीच में एक समय के लिए अनुत्कृष्ट हुआ, जो अनंत काल एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक पर्यायों में परिभ्रमण करता रहता है, उसके इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अनंत काल उपलब्ध होता है। उसकी बात नहीं चल रही, तीन घाती की, चार घाती की चल रही, घाती की चल रही। और घाती का उत्कृष्ट हो रहा है, ये घाती की बात समझ में आई तो अभी वो आगे की बात करेंगे। अनुत्कृष्ट का तो एक समय हमने देख ही लिया, दो उत्कृष्ट के बीच में, और उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल अनंत काल है, क्योंकि वो एक इंद्रिय में चला गया। वेदनीय नाम और गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंध क्षपक श्रेणी में अपने अपने बंध काल के अंतिम समय में होता है। समय लिया हूं, तथा इसके पहले नियम से अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है, उसमें भी जो अभव्य होते हैं उनके इस उत्कृष्ट की अपेक्षा सदा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद होता रहता है, और भव्यों के उपशांत मोह होने के पूर्व तक अनादिकाल से अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है, किंतु उपशम श्रेणी पर आरोहण करने के बाद वह सादी हो जाता है। कौन सा? अनुत्कृष्ट, यानी ग्यारहवें में बंद ही नहीं था, लौटकर दसवें में आया तो बंद शुरू हुआ, जब मिटा तभी अनुत्कृष्ट था, शुरू हुआ तभी अनुत्कृष्ट रहा। जो जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक और उत्कृष्ट रूप से कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक होता रहता है, यानी दोबारा श्रेणी चढ़ने तक अंतर्मूर्त होगा और फिर अनंत काल बीच में श्रेणी नहीं चढ़ी उसने, यही कारण है इन तीन कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है, क्योंकि उत्कृष्ट बंध एक ही समय के लिए है, यहाँ पर वो अंतिम समय का परिणाम जो है, तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध के अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत, ये तीन विकल्प बतलाकर सादि शांत की अपेक्षा अनुत्कृष्ट अनुभव बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त, यानी दोबारा श्रेणी चढ़ने की अपेक्षा नहीं, किसकी बात चल रही है? तीन आघाती की चल रही है। हाँ, उसका अनुत्कृष्ट नहीं, उत्कृष्ट तो अंतिम समय में होगा, और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। हाँ, चार घाती कर्मों में जो हमने देखा था, उत्कृष्ट बंध कौन करता है? तो संघी पंचे नहीं करता, उसको एक इंद्रिय में रखा तो अनंत काल होता है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। और ये जो वेदनीय नाम गोत्र में उत्कृष्ट बंध कब होता है? सूक्ष्म सांप्राय क्षपक के अंतिम समय में, परंतु अनुत्कृष्ट का तो अंतर हो सकता है ना, अनुत्कृष्ट की तो आदि हो गई कब? उपशम श्रेणी उतरते समय, और वहां से लेकर अर्ध पुद्गल परावर्तन उसका अनुत्कृष्ट का लंबा काल है, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल। आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध सर्व विशुद्ध परिणामों से होता है। आयु कर्म के कारणभूत परिणामों में उत्कृष्ट, ऐसा नहीं, आयु कर्म के कारणभूत जो परिणाम है उनमें विशुद्ध होगी ना, मैं क्या कहती हूँ? हाँ, देखो निकालो, सात पॉइंट निकालो, आयुकर्म के उत्कृष्ट अनुभव बंध का स्वामी तो किसके? तो साकार जागृत और तत्प्रायोग विशुद्ध युक्त लिया, तत्प्रायोग विशुद्ध ने आयुकर्म के योग्य। हाँ, अप्रमत्त लेते हैं, उत्कृष्ट अनुभव बंध में अवस्थित, तो उत्कृष्ट अनुभव बंध में अवस्थित ये जो लिखा है, तो यहाँ आयु कर्म के जो तत्प्रायोग्य जो परिणाम है उनमें से सर्व विशुद्ध लेंगे। आयु कर्म तो सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध में नहीं बनेगी, तत्प्राय आयु कर्म के योग्य जो परिणाम है उनमें से अधिक विशुद्ध परिणाम लेना। हाँ, कोई भी वो परिणाम वो दो समय तक रहता है, उनमें से जो उत्कृष्ट है, और इसका जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय है, अतः इसके उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। उन्होंने ये बताया वहाँ आयु, पेज नंबर 7 नीचे की लाइन, सबसे लास्ट लाइन,
आयु
साकार जागरूक प्रत्याय अभी आठवें पेज में आया। उत्कृष्ट अनुभाग बंध में आवश्यक अप्रमत्त संयत जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। अब ये जो उसके जो उत्कृष्ट अनुभाग बंध के कारण वो परिणाम कितने काल तक टिक सकते थे, 200 में इतना ही लेना। जैसे अन्य कर्मों में उत्कृष्ट अनुभाग कितने समय तक होगा, यानी वहां तो घाती में भी लगाया था, घाती में उत्कृष्ट अनुभाग तो संक्लेश में होता है और आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग विशुद्धि में होता है। तो इसके भी लगातार समय 2 हो गए। अब कहते हैं आयु कर्म का निरंतर बंध अंतर्मुख काल तक ही होता है, यही कारण है इसके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख कहा है। एक समय कैसे मान लेते, उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट हुआ या दो उत्कृष्ट के बीच में हुआ, यहाँ मत्य ज्ञानी आदि कुछ अन्य मार्गणाएं परिगणित की गई है, यानी जिसमें ओग के समान बताई है, जिनमें ओग प्ररूपणा के अनुसार काल घटित हो जाता है। ये बात लिखी थी ना पेज नंबर 26 पर पहले पैराग्राफ के अंत में दूसरी लाइन लास्ट। इसी प्रकार ओग के समान मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी वगैरह वगैरह यही बात यहाँ बताते हैं। ये विशेषार्थ चल रहा है कि यहाँ मत्य ज्ञानी आदि कुछ अन्य मार्गणाएं मार्ग गाये हुए हैं मार्गणाएं परिगणित की गई है, यानी उसी को उसको भी बताया है, जिनमें ओग प्ररूपणा के अनुसार काल घटित हो जाता है, इसलिए उनमें सब कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओह के समान कहा है। यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है, ओग प्ररूपणा में यहाँ स्वामित्व का निर्देश करके जिस प्रकार काल घटित करके बतलाया है, उसी प्रकार इन सब मार्गणाओं में अलग अलग स्वामित्व का विचार कर उक्त काल घटित कर लेना चाहिए। मात्र भव्य मार्गणा में ओघ प्ररूपणा के स्वामित्व से कोई अंतर नहीं है। केवल इस मार्गणा में वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का अनादि अनंत विकल्प नहीं बनता, क्योंकि भव्यों में है इसलिए अनादि अनंत नहीं होता। अभी हमने जो देखा ना मिथ्या दृष्टि को भी उन्होंने गणित किया यहाँ पर मत्य ज्ञानी में। अब मत्य ज्ञानी में वेदनीय नाम और गोत्र लगा लो, ओक के समान तो लिखा, काल में ओक के समान लिखना है,
एक समय से दो
समय और अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट किसके होगा, आशा का
सत्य पक्षी को उत्कृष्ट होगा,
यानी संक्लेश वाला लेना पड़ेगा ना वहाँ पर।
हाँ। सबसे ज्यादा संकलेश
वाला, संकलेश वाला लेना या विशुद्ध परिणाम वाला लेना? सम्यक तो के सन्मुख वाला तभी वो घटित होगा ना, कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन, फिर भी उसकी मार्गना बदल जाएगी, वो अंतर कैसे घटित होगा, ये सॉरी काल कैसे घटित होगा? देखो अनुत्कृष्ट का काल लेना है ना, अनुत्कृष्ट का काल, ओघ के समान मिथ्या दृष्टि की मार्गना भी बताई उन्होंने, तो उसको अलग अलग स्वामी तो विचार कर बताना ऐसा है। देखो हमने वेदनीय में हमको देखना था, मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट कब होगा? मति अज्ञानी में उत्कृष्ट है सोचना, मति अज्ञानी में उत्कृष्ट अनुभाग सोचना है। बाईस पान स्वामित्व देखकर फिर घटित करना, मत्य ज्ञानी में चार राति का तो संयम के अभिमुख वाले के होता है, वो जगन नहीं हुआ। और आप उत्कृष्ट देख रहे हैं क्या? उत्कृष्ट उसके पहले होगा, ये पेज नंबर 13 पर है। संगी मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट संकलेश युक्त चार गति का पंचेन्द्रिय जीव उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी है चार गति कर्मों के लिए, और फिर वो एकेंद्रिय में चला जाएगा। तो वो तो ओग में तो हमने ऐसा ही देखा था, वेदनीय के बारे में हमको देखना था। अभी वेदनीय नाम और गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बनने का स्वामी कौन है? तो संयम के अभिमुख सर्व विशुद्ध अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग में अवस्थित, तो उसका काल कितना होगा? एक समय दो समय। अब अनुत्कृष्ट ना, जब तक संयम के अभिमुख नहीं होता तो अनुत्कृष्ट ही होगा ना उसका, तो उसमें तीन विकल्प बनेंगे अनादि अनंत। हाँ हो गए ना, अनादि अनंत हो गए, संयम को देखना करना ही नहीं है, इसको काल ही घटित करना है, अंतर नहीं घटित करना है। देखो फिर से वेदनीय नाम गोत्र ओह की बात निकालो 26 पेज पर। हाँ काल की बात बता रहे ना, ओघ में ऊपर से पांचवी लाइन में वेदनीय नाम गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग का जगन में उत्कृष्ट काल एक समय है, मति अज्ञानी में भी वो संयम के अभिमुख वाले को एक समय दो समय घटित होगा, ये घटित हुआ। अनुत्कृष्ट अनुभाग तीन प्रकार का है, अनादि अनंत। अब कोई संयम मति अज्ञानी संयम के अभिमुखी नहीं हुआ तो अनादि अनंत वो तो अनुत्कृष्ट ही रहा, अनादि शांत जो पहली बार सम्यक्त के सम्यक्त नहीं संयम के अभिमुख हुआ, अनादि शांत हुआ। अब सादी शांत उसमें घटित नहीं होगा आपका, नहीं सादी शांत हुआ ना, अनुत्कृष्ट का आदि हुआ,
कब
उत्कृष्ट करके नहीं, अनुत्कृष्ट के आदि उत्कृष्ट की अपेक्षा कैसे करना परंतु परंतु बीच में तो वो तो अंतिम समय लेना है ना उसको संयम का, तो उसके मत्य ज्ञानी मार्गना छूट गई, इन्हें मति अज्ञानी था और उसने उत्कृष्ट करके अनुत्कृष्ट किया, ऐसे कब होगा? इसलिए वो सादी शांत वाली बातें घटित नहीं होगी, अनादि अनंत अनादि शांत होगी। सादी शांत घटित करना है तो है ना, मति अज्ञानी रहते हुए नहीं होगा, इसलिए उन्होंने घटित करके लिखा है। अलग अलग स्वामित्व है, इसे अलग अलग उसको सोचना चाहिए। अब आगे, ये तो ओह की बात हुई, अब हम आदेश से देखेंगे। नारकियों में पेज नंबर 27, सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 33 सागर है। इन्हें उत्कृष्ट बंध ही नहीं किया, लगातार अनुत्कृष्ट। आयु कर्म अंतर्मूर्त तक ही अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट बंध। आयु कर्म में क्या होगा, उत्कृष्ट एक समय या दो समय, अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त। तो वहाँ अंतर्मूर्त की लिमिट है, यहाँ तो 33 सागर के लिए। इसीलिए आयु को छोड़ा ना इसमें से, अन्य आठ कर्मों में से सात कर्मों में ये बात घटित होती है। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में अपनी अपनी स्थिति को जानकर काल ले आना चाहिए, यानी हर एक नरक की अपनी जो उत्कृष्ट स्थिति है उसको ले लेना। आप बताएंगे अश्विन भाई उत्कृष्ट स्थिति प्रत्येक नरक में, पहले में हाँ, फिर हाँ, पांच में, सात सागर, सात के बाद दस हो गए, दस सत्रह बाईस और तैतीस। ये नारकियों की बात हो गई। तीरियंचों में सात कर्मों का उत्कृष्ट भंग सामान्य नारकियों के समान है, एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय, किंतु अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, क्योंकि वो पंचनीय में आया ही नहीं तो अनंत काल होता है। इसी प्रकार अभव्य और असंगी जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि असंगियों में उत्कृष्ट बंध असंगी पंचेंद्रिय के होगा और फिर ऐसा अनंत काल एक इंद्रिय में रहेगा, वो तो अनुत्कृष्ट चलता रहेगा। पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल सामान्य तीर्यंचों के समान है, एक या दो समय। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक को अधिक तीन कल्याण। यानी वो पंचेंद्रिय जो जिस पंचेंद्रिय तीरंच त्रिक की बात करें में पर्याप्त है क्या, तीरंच नहीं है के सामान्य है, हाँ उसकी अपेक्षा वो पूर्व कोटि के जो संख्या है वो अलग अलग होगी। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त पुण्य, आठों कर्मों के, यहाँ सात नहीं लिया आठ लिया, उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल दो समय है और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। आयु में तो ये घटित होती ही बात थी, यह अन्य कर्मों में, क्योंकि तीर्यंच अपर्याप्त में रहने का लगातार मैक्सिमम अंतर्मूत होगा काय स्थिति उसकी। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। केवल सूक्ष्म जीव नहीं कहा, सूक्ष्म के पर्याप्त अलग, सूक्ष्म के अपर्याप्त अलग, क्योंकि उसमें प्रत्येक में रहने का लंबा काल अंतर्मूर्त है और दोनों में रहने का, सूक्ष्म में रहने का काल कितना ज्यादा है, असंख्यात लोग पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त करता रहेगा। अकेले पर्याप्त में रहने का काल अंतर्मूर्त, मात्र अपर्याप्त में रहने का काल अंतर्मूर्त। तो सूक्ष्म जीव कभी पर्याप्त हुआ कभी अपर्याप्त, तो सूक्ष्म पर्याय में ही रहा तो असंख्यात लोग बराबर बराबर। मनुष्य त्रिक में यानी सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य ने वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभव बंध का काल ओघ के समान है। अभी इसमें उत्कृष्ट बंध कब होगा, शपक एक एक समय ही होता है, एक समय। शेष भंग पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है। अनुत्कृष्ट के लिए क्या कहेंगे, वेदिनी नाम और गोत्र के अनुत्कृष्ट के लिए, हाँ पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन कल्य, मनुष्य है नहीं नहीं, तिर्यंच में पृथक वो शब्द आया है, परंतु उतने पूर्व कोटिया इनमें मनुष्य में नहीं होगी। अच्छा पहले की पूछ रहे हैं, तिर्यंचों में संघी और असंघी के 95 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्य, अब सामान्य मनुष्यों में हम लेंगे मनुष्य सामान्य 47 प्लस तीन, मनुष्य पर्याप्त लेंगे, अभी मनुष्य पर्याप्त लेने से नपुंसक वेदी और पुरुष वेदी लेने हैं, आठ सोलह और फिर 16, बीच में नपुंसक वेद का ही अपर्याप्त होगा ना, नहीं पर्याप्त का लेना, अपर्याप्त का लेना ही नहीं है, 16 पूर्व को क्या होगा, नहीं 15 में लेना,
और पुरुष वेद में
आठ, यानी सामान्य में 47 पूर्व कोटि, मनुष्य पर्याप्त में दो ही अपेक्षा लगती है, तीनों वेद वाले ले सकते हैं या फिर पुरुष वेद नपुंसक वेद ले सकते, अलग अलग जगह अलग अलग, अलग अलग जगह अलग अलग कथन उन्होंने पकड़ा है। मनुष्य पर्याप्त कहने से हमने देखा था ना पुरुष वेद नपुंसक वेद पकड़ना के लिए, मैंने 15 पूर्व कोटि मनुष्य नी में 7 पूर्व कोटि, प्लस वो 3 पल्ले, इसलिए उन्होंने पृथक का शब्द ले लिया जहां जो योग्य है। देवों में 7 कर्मों के उत्कृष्ट अनुभव बंध का काल नारकियों के समान है, एक या दो समय, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 33 साल है। इसी प्रकार सब देवों के अपनी अपनी स्थिति प्रमाण अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल जानना चाहिए। अब एकेंद्रियों में ये गति की बात हो गई, एकेंद्रियों में 7 कर्मों के उत्कृष्ट अनुभव बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 2 समय है, अनुत्कृष्ट अनुभव बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। नहीं देखो ये
उत्कृष्ट बंध तो
उत्कृष्ट बादर पर्याप्त यानी अनुत्कृष्ट लगातार अनुत्कृष्ट ही होता रहे यानी वो पर्याप्त में गया ही नहीं, ये अर्थ हुआ। सूक्ष्म में गई बरोबर, बादर के बदले सूक्ष्म में, हाँ सूक्ष्म का काल जो अभी हमने देखा था ना असंख्यात लोग, क्योंकि बादर में आएगा तो बीच में तो वो उत्कृष्ट करेगा बीच में। इसी प्रकार सब सूक्ष्म जीवों के काल एकेंद्रीय योग के समान है, एकेंद्रियों में इन जनरल जो बातें हैं वो
सूक्ष्म में तो एक समय से दो समय उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का कितना लेना है, खाली सूक्ष्म में सूक्ष्म जीवों का उत्कृष्ट किया है नहीं क्या, इतना काल तक उत्कृष्ट हो गए नहीं
सूक्ष्म में उत्कृष्ट असंख्यात लोक लिया, परंतु वो कैसे घटित होगा। अच्छा
नहीं, क्या है?
किया ही नहीं उसने
तो असंख्या,
तो बादर में किया ही नहीं, ऐसा क्यों लिया बादर का उत्कृष्ट काल क्यों नहीं लिया वहां को, ऐसे ना एक केंद्रीय में जब हमने कहा अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण कहा था तो वहां सूक्ष्म में रहने का काल दिया, और अभी सूक्ष्म जीवों के लिए कहते कि उसने किया ही नहीं, तो वैसे बादर के लिए भी किया ही नहीं ऐसा ले लो ना,
तो
अनंत काल लेने एक केंद्रीय में रहती हूँ अनंत काल तक उसने किया ही नहीं, परंतु ऐसा नहीं होता। यही बात पहले भी कभी आई थी कि भले एक केंद्रीय में रहेंगे, स्थिति के बारे में भी यही बात आई थी कि वहां ऐसा कहा था कि भले वो स्थिति उत्कृष्ट या जघन्य स्थिति बादर एक केंद्रीय बांधता है और बादर एक केंद्र में रहने का काल अंगुल का असंख्यात भाग है, फिर भी असंख्यात लोक के बाद वो नियम से उस स्थिति को बांधेगा, ऐसे यहाँ पर भी घटित हो रहा है ना। यही बात उन्होंने सूक्ष्म के लिए ली, यानी सूक्ष्म के लिए कितना भी रहा उसका काल असंख्यात लोक के बाद वो, तो ऐसा क्यों लिखते है, क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये जो स्थिति के भेद कहो या जो अनुभाग की अपेक्षा भेद कहो वो तो अनंत तो है ही नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण है, इसलिए वो लौट कर उसको बांधेगा। ये बात अनुभाग के है ज्यादा, पर फिर भी उसको असंख्यात लोक ही कहेंगे, असंख्यात गुणा वाला असंख्यात लोक होगा, यानी इतने काल में लौट कर उसको बांधेगा ही वो।
अनुभव के वेग कितने हो जाते
हैं असंख्यात लोग,
या तो अनुभव अनंत में जाता है और अनंत गुणा अनंत गुणा बनता जाता है, अनंत वेग
अनुभव की अपेक्षा भेद अनंत हो गए। हाँ परंतु एक केंद्रियों में वो परिणाम उसके जो है ना लौट कर उस पर आएंगे, इस तरह से लगता है स्थिति में तो देखा था हमने ऐसा ही।
तो असंख्यात नहीं है तो उस पर तो जैसे बताया था कि क्यों कुछ बातें नहीं
उत्कृष्टता ज्यादा है, फिर भी वो कम नहीं है तो मारना था उत्कृष्टता ज्यादा।
अब यहाँ अनुभव को गिनते समय अनंत की करते स्थिति गिनते समय के असंख्यात लोग की स्थिति बनती है, स्थिति के विकल्प कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक के। अनुभाग में भी अनंत अनंत गुणा होते हैं, परंतु
अनुभाग के जो भेद होते वो अनंत नहीं होते,
अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान असंख्यात होते। मैं जो बोल रही थी वो उसके बंद योग्य परिणामों की बात है, परिणामों की बात, यहाँ परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है तो उस परिणाम पर आएगा वापस, इतने काल के बाद वो लौट कर उस परिणाम में आएगा। अनुभाग बंध के कारणभूत परिणाम। हाँ, अगर रिपीट नहीं भी होगे तो इतने काल के बाद तो नियम से होगी।
रिपीट होंगे तो ज्यादा काल भी होगा,
कम काल भी हो सकता है, यदि लंबे से लंबे काल इतना हो सकता है। यानी अन्य अन्य ही रिपीट होते रहे, ये हुआ ही नहीं, ऐसा है ना, ऐसे आपको कहना है ना।
एक ही असंख्यात परिणाम असंख्यात, एक परिणाम ज्यादा भी हो, कितनी बार भी
ज्यादा भी हो सकता है,
हो सकता है।
अनुत्कृष्ट में तो बहुत सारे भेद ले लिए ना सारा, असंख्यात लोक प्रमाण वो परिणाम के इन अनुभाग बंध के कारणभूत परिणाम है, असंख्यात लोक प्रमाण है, उसमें से उत्कृष्ट वाला एक ही है, तो अनुत्कृष्ट में अन्य किसी में भी रिपीट होता रहे उससे कुछ नहीं लेना देना। उत्कृष्ट कब होगा? असंख्यात लोक के बाद, ऐसा लगता है मुझे, ऐसे लेना पड़ेगा। याद है ना वहाँ पर, क्योंकि एक केंद्रीय में यानी बांदर एक केंद्रीय में लगातार रहता है तो अंगुल का असंख्यात अभाव, परंतु असंख्यात लोक के बाद नियम से वो बांधता ही है, ऐसे यहाँ पर ये लिया। इसी प्रकार सब ले ले, देखो पृथ्वी कायिक एक केंद्रीय में चौथी लाइन, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति काय और निगोद जीवों में काल ओघ के समान है, एक से दो समय तक,
और अनुत्कृष्ट का शब्द क्योंकि यहाँ पे भी दादा पृथ्वी का एक जन्म दिया है तो सूक्ष्म पृथ्वी का एक में चला जाएगा, तो
पृथ्वी का एक इन जनरल ले लिया है। यहाँ ओह के समान जो लिया वो एक इंद्रिय योग समझना चाहिए ना, के रेगुलर योग समझना चाहिए। बादर एक इंद्रियों में सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, ये देख लिया, अनुत्कृष्ट को ले लिया यहाँ पर। और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है जो असंख्यात असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के बराबर होता है, वो ले लिया उसने, उत्कृष्ट किया ही नहीं, ऐसा जीव ले लिया, अनुभाग की बात है। बादर एक इंद्रिय मार्ग ना नक्की बता दिया, अभी सूक्ष्म में जाने की बात कहाँ लगी, वो पहले अलग देखा था, अभी बादर एक इंद्रियों में है
उसमें देने का काल बता दिया,
और उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं। वैसे एक इंद्रियों में उन्होंने उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण ही लिया है, है ना,
वो तो सूक्ष्म में देने का काल,
अंगुल का असंख्यात होगा। बादर एक इंद्रिय पर्याप्त को में सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल संख्या हजार वर्ष है, ये तो काय स्थिति ले रहे हरेक की, वो तो बादर एक इंद्रिय लिखा है, पर्याप्त पर्याप्त दोनों आ गए उसके अंदर। इसी प्रकार बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर अग्नि का एक, बादर वायु का एक, पहले बादर एक इंद्रिय लिया, फिर बादर एक एक काय वाला लिया,
एक सेंटेंस है बादर एक इंद्रिय पर्याप्त
हो गया ना।
Thank you.
संख्या तो हजार वर्ष पढ़ा था ना हमने,
वो तो मैंने पूछा था तो हमने पढ़ा।
अरे मैंने अंडरलाइन भी किया है, बादर एक फिर पढ़ती हूँ, बादर एक पर्याप्तकों में सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुवाहक बंद का जगन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल संख्या हजार वर्ष है। तब आपने पूछा उनके उनका काल कितना होता है उसमें रे। इसी प्रकार बादर पृथ्वी का एक, वहां तो बादर एक ही में घटित हुआ है, अब बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर अग्नि का एक, बादर वायु का एक, बादर वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर और निगोद इनके पर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। अभी वहां उसकी अपनी अपनी स्थिति अलग अलग होगी जो कुछ है। हा? क्या क्या कहना चाहिए? उत्कृष्ट के लिए ओके समय एक से दो समय, अनुत्कृष्ट के जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है, एक एक काइक में कर्म स्थिति प्रमाण है। बादर जो इतनी विशेषता है कि बादर वनस्पति का एक जीवों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। बादर वनस्पति का एक कहने से निगोद भी आ गए, उसमें अनंत काल रहता हुआ भी अनुत्कीर्ण अंगुल के असंख्या के भाग के बाद उसका उत्कृष्ट बंध होगा, ये अर्थ निकलता है इसमें विशेष अर्थ।
वो
उत्कृष्ट बंध करेगा ही करेगा। देखो फिर इसका विशेष अर्थ, यद्यपि एक नियम का सामान्य उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल है, पर यह काल सब अवांतर भेदों में परिभ्रमण करने की अपेक्षा कहा है। सात कर्मों का निरंतर अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध सूक्ष्म एकेंद्रिय के होता है, बादर एकेंद्रिय हो जाने पर पर्याप्त दशा में उसके उत्कृष्ट अनुभाग बंध होना संभव है। इसी से यहाँ पर एकेंद्रिय के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण का हमने जो डिराइव किया वो बराबर है, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रिय की उत्कृष्ट काय स्थिति उक्त प्रमाण है। एकेंद्रिय सूक्ष्म और पांचों स्थावर काय सूक्ष्म जीवों की यही काय स्थिति होने से इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल भी यही कहा है। पांचों स्थावर काय और निगोद जीवों में भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि पृथ्वी आदि चार की काय स्थिति असंख्यात लोक प्रमाण तो है ही, वनस्पति काय और निगोद जीवों की काय स्थिति भिन्न है, पर इनमें भी सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल ओह एक इंद्रियों के समान ही प्राप्त होता है,
तो
यानी असंख्यात लोक होता है। इसलिए इनमें भी एक इंद्रिय ओघवत काल कहा है। अब बादर एक इंद्रियों के किसी कायिक को नहीं लिया, एक इंद्रिय को लिया, बादर एक इंद्रियों की उत्कृष्ट काय स्थिति अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है, इसलिए इनमें सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उक्त प्रमाण काल कहा है। इसी प्रकार आगे भी जिनकी जो काय स्थिति कही है उसका विचार कर सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल जान लेना चाहिए। कोई विशेषता न होने से यह उसका अलग से निर्देश नहीं किया, शेष कथन सुगम है।
या तो संभव होने से बात की है, पर नियम से होगा ऐसा नहीं
बताया, वो तो स्थिति में बताया, अनुभव की बात है ना, इसलिए वो उसमें घटित नहीं हुआ। इन वो सूक्ष्म जाने की अपेक्षा निरंतर अनुत्कृष्ट होता है, वहां इसको ले लिया और अन्यत्र काय स्थिति को ही लिया। अनुत्कृष्ट बंद करता रहा, उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं। जैसे नारकियों ने हमने देखा अनुत्कृष्ट का तो 33 अगर ले, ऐसे यहाँ पर भी ले लिया। हाँ, अंतर में गति को अभी देखेंगे। द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और उनके पर्याप्त जीवों में उत्कृष्ट अनुभव बंध का काल नारकियों के समान है, एक या दो समय। अनुत्कृष्ट अनुभव बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। ये उसकी काय स्थिति ले। पंचेंद्रिय की बात कल पढ़ेंगे, फिर विशेषार्थ भी पढ़ेंगे। के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्त कर्णम सदा देत हो। अशुभ।